नमस्कार भारत, 5 अक्टूबर शुक्रवार, मैं हूं आदर्श राठौर। उछलते तेल, गिरते रुपए और लड़खड़ाते बाजार को संभालने आए वित्त मंत्री अरुण जेटली, क्या सुधर पाएंगे अर्थव्यवस्था के हालात?
बड़ी चुनौती ये है कि रुपया चूंकि कमजोर हो रहा है, कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे हैं, उससे कैसे निपटेंगे?
कांग्रेस नेता कमलनाथ पर चुनाव आयोग का आरोप, मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले में रखे बनावटी सबूत। जानेंगे उत्तर प्रदेश के बागपत में 12 मुसलमानों के हिंदू बनने का क्या है सच?
भाई, हमने कहा कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे साथ में बहुत बड़ा बुरा अत्याचार हुआ, हम अपने भाई के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित जज ब्रेट कैवेनो के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर आई एफबीआई की रिपोर्ट को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सीनेटर आमने सामने हैं। रिपब्लिकन सीनेटर जेफ फ्लेक और सुजन कॉलिन्स ने कहा कि रिपोर्ट से उनकी चिंता कम हुई है, जबकि कुछ डेमोक्रेट सीनेटरों ने एफबीआई की रिपोर्ट की निंदा की है। उनमें से एक डेमोक्रेट ने आरोप लगाया कि व्हाइट हाउस ने एफबीआई के हाथ बांध दिए हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। पश्चिमी देशों ने रूस के सैन्य खुफिया विभाग पर दुनिया भर में कई साइबर हमले करने के आरोप लगाए हैं। अमरीका, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स ने कहा कि रूस ने कई अहम संस्थानों पर साइबर हमले किए। अमरीका के रक्षा मंत्रालय ने रूस के 7 कथित एजेंट्स को साइबर हमले की साजिश रचने का अभियुक्त बनाया है। अमरीका का दावा है कि इन लोगों के निशाने पर फीफा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और एक अमरीकी परमाणु कंपनी थी। इन पर ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूस पर कथित नर्व एजेंट हमले की जांच कर रहे ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के कंप्यूटर हैक करने की कोशिश का भी आरोप है। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस बीच ब्रिटेन के विदेश सचिव का कहना है कि ब्रिटेन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रूस पर और प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा कर रहा है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा,
This indictment alleges a conspiracy to use computer hacking to obtain non-public personal health information.
कंप्यूटरों को हैक कर एंटी डोपिंग एजेंसी की फाइलों से डेटा चुराने की कोशिश की गई। ये सब इन संस्थानों को कमजोर करने के मकसद से किया गया। इन साइबर हमलों के निशाने पर हैक की केमिकल वेपन लेबोरेटरी और अमरीका की एक न्यूक्लियर पावर कंपनी थी। ये थे अमरीकी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूक्रेन और हंगरी ने एक दूसरे के मानद राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है। दरअसल हंगरी यूक्रेन के नागरिकों को अपना पासपोर्ट जारी कर रहा था, जिस पर यूक्रेन ने आपत्ति जताई। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने वाणिज्य दूतावास के प्रमुख को देश छोड़ने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। आरोप है कि उन्होंने ही एथनिक हंगेरियन लोगों को पासपोर्ट जारी किए थे। यूक्रेन की कार्रवाई के जवाब में हंगरी के विदेश मंत्रालय ने भी यूक्रेन के वाणिज्य दूत को निष्कासित करने की घोषणा की है।
Ezt követően, ez a reggeli órákban történt, ezt követően haladéktalanul ide a külgazdasági és külügyminisztériumba.
ये सब आज सुबह हुआ। इसके तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया और राजधानी बुडापेस्ट स्थित यूक्रेन के वाणिज्य दूतावास के प्रमुख को 72 घंटे के अंदर हंगरी से जाने के लिए कह दिया। ये थे हंगरी के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने चीन पर अमरीका की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। पेंस ने कहा कि चीन डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीका का राष्ट्रपति बनते नहीं देखना चाहता। उन्होंने कहा कि चीन ने अमरीका के व्यापारिक, अकादमिक और प्रशासनिक मामलों को प्रभावित करने की कोशिश की। पेंस ने कहा कि चीन ने अपने मीडिया के जरिए अमरीका के लोगों से सीधी अपील की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार को लेकर कड़ा रुख दिखाया है, इसलिए चीन ये सब कर रहा है। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी नाइकी ने उनके खिलाफ लगे बलात्कार के आरोपों पर चिंता जताई है। नाइकी ने कहा कि कैथरीन के आरोप परेशान करने वाले हैं। रोनाल्डो के एक और स्पॉन्सर ईए स्पोर्ट्स ने कहा कि वो मामले पर नजर बनाए हुए है। हालांकि रोनाल्डो ने इन आरोपों से इनकार किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। केंद्र सरकार ने कल पेट्रोल डीजल के दामों में रियायत की घोषणा की। इस घोषणा का असर शेयर बाजारों पर भी नजर आया, जो गिरावट के साथ बंद हुए। एक तरफ जहां सरकार तेल के दामों को काबू करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का जो फैसला लिया है, क्या उससे अर्थव्यवस्था को कोई लाभ होगा? इसी पर सुनिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग 2.5 रुपए तुरंत कंज्यूमर्स को इसका रिलीफ देंगे।
धड़ाम होते शेयर बाजार के बीच जब कल वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो कुछ खास घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो घोषणा की उसके बाद शेयर बाजार और नीचे गिर गया। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर से 1.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। साथ ही तेल कंपनियों से भी डीजल पेट्रोल के दाम 1 रुपए प्रति लीटर कम करने के लिए कहा। उन्होंने राज्यों से भी गुजारिश की कि वो अपने यहां 2.5 रुपए वैट कम करें, जिसके बाद डीजल पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं। जेटली की इस गुजारिश के बाद भाजपा शासित राज्यों में वैट घटाने की मानो होड़ सी लग गई।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहाँ की जनता को डीजल और पेट्रोल में 5-5 रुपए की भारी राहत इससे मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पेट्रोल डीजल पर 2.5 रुपए वैट हटाने की घोषणा की। इसके बाद भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक कम हो गए, लेकिन साथ ही राजनीतिक बयानबाजियों का खेल भी शुरू हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 2.5 रुपए कम कर दी और ये जनता के साथ धोखा है। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी सरकार कई देशों को सस्ता पेट्रोल बेच रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा,
मोदी जी ये जवाब देना पड़ेगा कि जहां आप भारत के लोगों के ऊपर अनाप शनाप पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बोझ डाल रहे हैं, आप 29 देशों को सस्ता पेट्रोल और डीजल क्यों बेच रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा तेल के दाम कम करने से कल शेयर बाजारों में काफी गिरावट दर्ज की गई। केंद्र सरकार द्वारा तेल के दाम कम किए जाने से अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हो सकता है? इस सवाल पर वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा कहते हैं,
तो कुछ हद तक तो अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्योंकि डीजल जो है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो अगर डीजल के दाम कम होते हैं तो निश्चित तौर पर जो सामान की लागत बढ़ने की आशंका थी वो कम हो जाती है थोड़ी, और इससे भी लोगों को एक फायदा होगा।
तेल के दाम सरकार ने थामने की कोशिश की है, लेकिन गिरते शेयर बाजार और रुपए को सरकार कैसे थामेगी? इस पर शिशिर सिन्हा कहते हैं,
देखिए शेयर बाजार का गिरना आपके बस में नहीं है। अगर शेयर बाजार में बहुत तेज से बिकवाली हो रही है तो उसकी वजह यह है कि एक घबराहट काफी ज्यादा हो चुकी है। आपके जो विदेशी निवेशक हैं, जो लंबे समय तक भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करते रहे हैं और सहारा देते रहे हैं, उनको अमेरिका में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है, तो वो यहाँ से पैसा निकाल ले रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि रुपया चूंकि कमजोर हो रहा है, कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे हैं, उससे कैसे निपटेंगे।
विरोधियों का कहना है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल के दाम कम करके जनता के बीच बड़ा दांव खेला है और वो इसे चुनावी पैंतरा भी बता रहे हैं, लेकिन इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी उड़ान भरती है ये कुछ दिनों में मालूम पड़ ही जाएगा। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस ने बसपा के खिलाफ गुरुवार को चुप्पी तोड़ी और कहा कि पार्टी उसके साथ गठबंधन के लिए 50 सीटों की मांग कर रही थी। कांग्रेस ने कहा है कि अभी वो 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी से भी बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर मध्य प्रदेश की वोटर लिस्टों में गड़बड़ी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बनावटी सबूत रखने का आरोप लगाया है। पेश है भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गठबंधन नहीं होने देना चाहते हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने इसके लिए बसपा को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि बसपा प्रदेश में गठबंधन के लिए 230 सीटों में से 50 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि उनका वोट प्रतिशत 6 है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे पार्टी की संभावनाओं पर कोई असर नहीं होने वाला है।
50 सीटें, उनको 6% वोट मिली, 2013 में और उन्होंने 50 सीटों की हमें सूची दी। इस सूची में ऐसी सीटें थीं जो उन्होंने नहीं जोड़ी थी, जहां उनको 20,000 से लेकर 34,000 तक वोट था। ये हमें बात समझ नहीं आई, पर अब उन्होंने फैसला कर लिया, हम चुनाव लड़ेंगे, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई समझेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए फैसला करेंगे।
मायावती की इस घोषणा को 2019 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की महागठबंधन बनाने की कोशिश को एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कमलनाथ ने कहा कि 2019 का चुनाव अलग है और गठबंधन की पूरी संभावना है, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी से बातचीत अभी चल रही है।
मैं नहीं मानता कि हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है और 2019 के लिए भी गठबंधन का प्रयास किया जाएगा। मेरी बात सपा से हुई थी, मेरी अखिलेश यादव जी से कुछ दिन पहले ही, 4 दिन पहले बात हुई थी, हम उनसे चर्चा, हमारी चर्चा जारी है। हम सबको सबके साथ बात कर रहे हैं, सबके साथ बात करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वोट के बिखराव और वोट के विभाजन से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुए।
उधर मध्य प्रदेश में फर्जी मतदाता सूची के मामले में कांग्रेस की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि वो बताए कि उसने फर्जी मतदाता सूची के संबंध में क्या कार्रवाई की। चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा जहां मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी थी वहां तुरंत कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने जहां से मतदाता सूची का डेटा लिया है वो गलत है। कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में करने के लिए याचिकाकर्ता कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि जानबूझकर कोर्ट में गलत दस्तावेज दिए गए हैं। आयोग ने मांग की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। शुरहनिया, ZBBC न्यूज, भोपाल।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बदरखा गांव में बीते 2 अक्टूबर को एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। घर के मुखिया अख्तर अली अब धर्म परिवर्तन कर धर्म सिंह बन गए हैं और अब उनको इंतजार है इंसाफ का। लेकिन क्या हिंदू बनने से इंसाफ मिलना सुनिश्चित हो जाता है? सुनिए बागपत से BBC संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट।
जी मुझे अपना मजहब छोड़ना नहीं, मुझे अपने मजहब में रहना, इन्हें जो करना मैं इन्हें मना नहीं कर रही, ये करो, पर मुझे अपने बच्चे को अपने शोहर को भी नहीं छोड़ना जा रहा।
ये है रुकैया खातून, ये बता रही हैं कि उनके पति नौशाद ने उन्हें हिंदू बनने के लिए कहा था लेकिन ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बदरखा गांव के इस परिवार के 12 लोगों के हिंदू बनने की बात कही जा रही है। इस परिवार के मर्दों को गांव के ही मंदिर में युवा हिंदू वाहिनी के सुकेंद्र खोखर और योगेंद्र रावत ने एक अनुष्ठान में हिंदू बनने की घोषणा की। 2 अक्टूबर को इनके सिर पर तिलक लगाए गए, मंत्र पढ़े गए और शंख फूंके गए। 62 साल के अख्तर अली धर्म सिंह बन गए। इनके बेटे नौशाद नरेंद्र, दूसरे बेटे दिलशाद दिलेर सिंह और तीसरे बेटे इरशाद का भी कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नाम कवि रख लिया है। दावा तो किया जा रहा है कि इस घर से 12 लोग हिंदू बन गए, लेकिन हमारी पड़ताल में कुल 4 लोगों ने ही खुले तौर पर हिंदू धर्म अपनाने की बात कही। आखिर हिंदू बनने का फैसला क्यों किया? नरेंद्र को सुनिए जो 3 दिन पहले तक नौशाद थे।
भाई हमने कहा कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे साथ में बहुत बड़ा बुरा अत्याचार होया, हम अपने भाई के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हमने पहले भी उन्हें उनते भी कह दिया और एक बारों में भी करवाई थी और अब जब हम धर्म परिवर्तन करेंगे हमारा कोई सहयोग साथ देवे।
नौशाद का कहना है कि उन्हें युवा हिंदू वाहिनी ने इंसाफ दिलाने का वादा किया है, हालांकि युवा हिंदू वाहिनी के UP अध्यक्ष सुकेंद्र खोखर इससे इनकार करते हैं।
हमने उनसे कोई वादा नहीं किया, उन्होंने हमें कहा कि हमें मुस्लिम अपना नहीं है, मुस्लिम कहते हैं कि तुमने कुरान को, इन्होंने कुरान को गुस्से में गाली दे दी, इस्लाम को गाली दे दी, तो इनकी पंचायत हुई, मुस्लिमों ने इनका तिरस्कार कर दिया।
बदरखा गांव बागपत शहर से 35 किलोमीटर दूर है, यह गांव जाट बहुल है। अख्तर अली का परिवार जिस घर में रह रहा है वो गांव के ही जगबीर सिंह चौधरी का है। अख्तर अली का पैतृक गांव बदरखा ही था, लेकिन इसी साल फरवरी महीने में ये बागपत के पास मुस्लिम बहुल निवाड़ा गांव में बस गए थे। जुलाई में अख्तर अली के 22 साल के बेटे गुलजार हसन का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। पुलिस का कहना है कि ये बिना सूचित किए शव को दफनाने निकल गए थे। बाद में गांव वालों ने पुलिस को सूचित किया तो शव का पोस्टमार्टम किया गया। अली अख्तर और उनके बेटों का कहना है कि पुलिस और उनके कौम के लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया, इसलिए हिंदू बनने का फैसला किया। क्या हिंदू बनने से पुलिस इनके मन मुताबिक काम करेगी? बागपत के एसपी शैलेश पांडे कहते हैं,
देखिए लॉ सभी के लिए समान है, इन्वेस्टिगेशन साक्ष्यों के बेसिस पे होती है, बिना किसी अदर इन्फ्लुएंस के इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अब जहां तक इनका प्रश्न है, इन्होंने एक एफिडेविट दिनांक 1 अक्टूबर को एसडीएम के समक्ष में दी, जिसमें इन्होंने ये बात का उल्लेख किया है कि इन्होंने बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म से प्रभावित होकर, उनके प्रिंसिपल से प्रभावित होकर इन्होंने ऐसा किया है, और इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बिना किसी के बहकावे में या बिना किसी के दबाव में।
इस परिवार में जितने लोग हिंदू बनने का दावा कर रहे हैं, उन सबका तर्क यही है कि इंसाफ नहीं मिला इसलिए धर्म बदल लिया। लेकिन क्या हिंदू बनने से इंसाफ सुनिश्चित हो जाता है? इस सवाल का जवाब न धर्म बदलने वाले परिवार के पास है और न धर्म बदलने के लिए अनुष्ठान का आयोजन करने वाले युवा हिंदू वाहिनी के पास। रजनीश कुमार, BBC, बागपत के बदरखा गांव से।
कहा जाता है कि कानून का पहिया जरा धीमी रफ्तार से घूमता है और उसके कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही मामला है एसके शर्मा का, जो पिछले 20 सालों से इसरो जासूसी मामले में गलत ढंग से अभियुक्त बनाए जाने के कारण हुए नुकसान और अपमान के लिए मुआवजा पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब उनकी सेहत भी खराब हो चली है। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले महीने जब सुप्रीम कोर्ट ने इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर नंबी नारायणन को 50 लाख रुपयों का मुआवजा दिया, तो हर कोई समझ रहा था कि आखिरकार इसरो जासूसी का मामला खत्म हो गया है। लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं था कि एसके शर्मा ने भी केरला सरकार से मुआवजा मांगा था, मगर उन्हें ये नहीं मिला। 20 साल से शर्मा इंतजार करते रहे हैं कि उन्हें 55 लाख रुपयों का मुआवजा एक न एक दिन आ ही जाएगा। उन्होंने मुआवजा इसलिए मांगा था क्योंकि उन पर देश के खिलाफ जासूसी का आरोप लगा था। इंटरव्यू के दौरान शर्मा कई बार रो पड़े। उन्होंने BBC को बताया,
इन बैंगलोर सो वेल टू डू हैप्पी आई वाज विद माय वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, सडनली दे केम एंड पिक मी फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन।
मैं, मेरी पत्नी और 3 बेटियां खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक हमें हिरासत में लिया गया और मारा पीटा गया ताकि हम मंजूर करें कि हमने जासूसी में भाग लिया था। हमारा नाम बदनाम कर दिया, यहाँ तक कि हमारी 2 बेटियों को स्कूल में भी इतना अपमान किया गया कि वो स्कूल नहीं जा पाई थी। हमारी 2 कार थी और हमारी पत्नी ने उन्हें भी बेंगलुरु और केरला के बीच भाग दौड़ और वकीलों की फीस देने के लिए बेच दिया। ये थे इसके शर्मा के शब्द। शर्मा की गलती ये थी कि उन्होंने अपने खास दोस्त चंद्रशेखर की बात मानकर जान पहचान के स्कूल में एक बच्चे को सीट दिलवाई थी। वो बच्चे मालदीव्स की एक महिला की बेटी थी। इस महिला को भी इस मामले में इसरो के डॉक्टर नंबी नारायणन और डी शशि कुमारन, चंद्रशेखर और मालदीव्स की एक अन्य महिला के साथ अभियुक्त बनाया गया था। दिलचस्प बात ये थी कि उनकी पहली मुलाकात डॉक्टर नारायणन के साथ जेल में हुई थी। जब CBI ने जांच की तो उसको इस मामले में किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील टोमी सेबेस्टियन ने शर्मा का मामला पहले दिन से लड़ा है। वो कहते हैं,
वी फाइल्ड द सूट क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 55 लाख। व्हाई वी फाइल्ड द सूट हियर? सूट इन बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट।
CBI से क्लीन चिट के बाद हमने बेंगलुरु की एक न्यायालय में 55 लाख रुपयों के मुआवजे के लिए याचिका पेश की। उसके बाद केरला सरकार ने कहा कि यह मामला बेंगलुरु के इलाके में नहीं आ सकता है। न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। फिर 2 साल से ये मामला बेंगलुरु की न्यायालय में है। ये मामला बिना वजह इतने सालों से कोर्ट में है। ये थे टोमी सेबेस्टियन के शब्द। शर्मा के मामले का महत्व ये है कि उनको पिछले 2 साल से भोजन नली का कैंसर हुआ है, जो उनके दिमाग तक पहुंच गया है। शर्मा की उम्मीद ये है कि इस मुआवजे से मिलने वाले पैसे को वो अपने इलाज और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा कि अब तो बस अपने दिन गिन रहे हैं। इमरान कुरैशी, BBC, बेंगलुरु।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। गुरप्रीत सैनी हमारे साथ स्टूडियो में है। क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर एक तस्वीर दिख रही है जिसमें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन कल पहुंचे थे दिल्ली और आज उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 19वीं द्विपक्षीय वार्षिक शिखर बैठक होगी जिसमें कि $5 अरब के S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा होने की उसका करार होने की उम्मीद है। दोनों देश अंतरिक्ष रक्षा ऊर्जा समेत कई अन्य अहम समझौते भी करेंगे।
जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे सामने है जिसमें कि ये खबर है कि जो फार्म फायर है, जो खेतों में आग लगाई जाती है भूसी को जलाने के लिए, उससे NCR एक बार फिर से प्रदूषण का शिकार हो सकता है। और इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो 9 ज़िले हैं उसमें हरियाणा के और आसपास पंजाब के, उनमें कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है कि जो उनके पास फसलों को काटने के बाद जो बचती है चीज़ें उनको किस तरह से उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए, उनका निपटारा कैसे किया जाए।
जी, और ICICI बैंक के MD और CEO पद से चंदा कोचर ने इस्तीफा दे दिया है। कुनबा परस्ती और हितों में टकराव के आरोप की जांच में घिरी चंदा कोचर ने गुरुवार को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। कोचर की जगह संदीप बख्शी को MD और CEO की जिम्मेदारी दी गई है। बैंक ने स्पष्ट किया कि कोचर के मामले में बाहरी एजेंसियों के माध्यम से बैंक द्वारा मई में शुरू की गई जांच इससे प्रभावित नहीं होगी और जांच जारी रहेगी।
जी।
इसके अलावा पाकिस्तान को मिली दो तरफा फटकार, ये जनसत्ता अखबार की हेडिंग है। भारत से द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से दखल देने की अपील की है, लेकिन अमेरिका ने मध्यस्थता की मांग अस्वीकार करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर तय करें। वहीं भारत ने कहा कि वार्ता के लिए समुचित माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती।
जी।
इसके अलावा नव भारत टाइम्स में एक बड़ी दिलचस्प हेडिंग है, तेल की जलन पर ₹2.5 का मरहम। जो कीमतें जो कम की गई है पेट्रोल डीजल की, उसे लेकर ये हेडलाइन है।
जी, और एक खास मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ कल क्रिकेट में, जिस तरह से टेस्ट मैच में पृथ्वी शॉ का जो शानदार प्रदर्शन रहा और उसको लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। बहुत ही शानदार तस्वीर लगी है उनकी, उन्होंने बल्ला उठाया है, हेलमेट उठाया है और साथ ही में जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि 18 साल की उम्र में उन्होंने ये जो अपने पहले ही टेस्ट मैच में जिस तरह से शतक जड़ा है, उसकी तारीफों के पुल लगभग हर अखबार में बांधे गए हैं।
जी, और वर्ल्ड बैंक ने भ्रष्टाचार के आरोप में कई भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, ये हेडलाइन भी दिख रही है दैनिक भास्कर अखबार में। इसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने इस साल कई भारतीय कंपनियों और कुछ भारतीयों पर दुनिया भर की अपनी परियोजनाओं से प्रतिबंधित कर दिया है उनको। वर्ल्ड बैंक की सालाना ग्रुप सेंक्शन सिस्टम रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धोखाधड़ी तथा फर्जीवाड़े के कारण ऑलिव हेल्थ केयर और जय मोदी को प्रतिबंधित किया गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद देश के कई हिस्सों में महिलाओं को पूजा स्थलों में प्रवेश की इजाजत नहीं है। झारखंड समेत कई राज्यों में रहने वाले संथाली आदिवासी भी महिलाओं को पूजा स्थलों में जाने और वहां पूजा करने की इजाजत नहीं देते। संथाली महिलाओं को कई और बंदिशों का भी सामना करना पड़ता है। दूसरे आदिवासी समुदायों में भी महिलाओं को लेकर कई तरह के प्रतिबंध हैं। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
निर्मला पुतुल संथाली और हिंदी की जानी मानी कवियत्री हैं। उन्हें साल 2001 में साहित्य अकादमी का साहित्य सम्मान मिल चुका है। उनकी कविताओं के पोस्टर बनाकर लोग आंदोलन करते हैं। वे तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं, इसके बावजूद वे अपने पूजा स्थल जाहिर थान में पूजा नहीं कर सकती क्योंकि वे स्त्री हैं। संथाली समाज महिलाओं को अपने पूजन स्थल में पूजा की इजाजत नहीं देता। निर्मला पुतुल ने BBC से कहा,
पुरानी रूढ़िवादी परंपरा के तहत ही आता है, महिलाओं को उतना घर से लेकर आगे पूजा पाठ करें।
संथाली महिलाएं साल में सिर्फ एक बार वहां की पूजा में शामिल होती हैं, जब बाहा पर्व के मौके पर नाइके उन्हें फूल देते हैं। संथाली आदिवासियों में नाइके का वही स्थान है जो हिंदू समाज में पुजारी या मुसलमानों में इमाम का होता है। इस दौरान महिलाएं नाचती हैं, गाती हैं और पुरुष इसमें उनका साथ देते हैं। यह विनम्रता ही है कि जाहिर थान की साफ सफाई का काम तो महिलाओं के जिम्मे है, लेकिन पूजा करने या कराने का अधिकार उन्हें नहीं मिला हुआ है। अव्वल तो यह कि पूजा के बाद मिलने वाला विशेष प्रसाद सोड़े भी सभी महिलाओं को नहीं मिलता। अगर शादी के बाद किसी महिला की पहली संतान बेटा हुआ तो प्रसाद पाने के अधिकारी होगी, लेकिन अगर उन्हें बेटी हुई तो प्रसाद नहीं मिलेगा। आदिवासी महिलाएं अब इसके खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। दुमका स्थित एसपी कॉलेज में संथाली की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शर्मिला सोरेन ने कहा कि जाहिर थान में महिलाओं के प्रवेश को लेकर संथाली समाज को अपनी परंपराओं की समीक्षा करनी चाहिए
और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन समाज के सारे लोगों के साथ बातचीत करके ही निर्णय लेना ज्यादा अच्छा होगा।
वासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू इस परंपरा को महिला अधिकारों का हनन करार देते हैं।
ये युग युग से है कि आदिवासी महिलाओं को खासकर संताल समाज जो लार्जेस्ट अमंग ट्राइबल्स है उसको उसके पूजा स्थल में नहीं जाने देने का, गांव में जो दरबार होता है विलेज डिस्प्यूट सॉल्व करने का उसमें भी महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता है, महिलाओं को अभी तक संपत्ति का अधिकार भी नहीं है, तो ये सारी चीजें एंटी वुमेन है।
हालांकि संथाली बुद्धिजीवियों में इस बात को लेकर मत भिन्नता भी है। दुमका स्थित सिद्धो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति डॉक्टर प्रमोदनी हांसदा कहती हैं कि यह धार्मिक रिचुअल है, इसमें महिलाओं के अधिकारों के हनन जैसी बात नहीं।
अधिकार तो हम लोग नहीं कहेंगे, धार्मिक रिचुअल तो उनकी।
संथाल एक्सप्रेस के संपादक चुंडा सोरेन सिपाही कहते हैं कि आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को लेकर हमेशा से सजग रहा है, इसके बावजूद महिलाओं के पूजा स्थलों पर जाने की इजाजत को लेकर न तो कभी बड़ा विरोध हुआ और न इस पर पुनर्विचार की स्थिति बनी, इसलिए यह परंपरा चलती आ रही है, लेकिन परंपराएं टूट नहीं होती।
आप सुन रहे थे रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। क्रिकेट की बात करें तो कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। हालांकि शुरुआत में टीम इंडिया का ये फैसला खराब रहा क्योंकि केएल राहुल बिना खाता खोले पेविलियन की राह चले गए। इसके बाद अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रहे पृथ्वी शॉ ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर पारी को संभाला और वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार शतक लगाया। पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 4 विकेट का नुकसान किया और 364 रन बनाए। पहले ही मैच में शतक बनाकर पृथ्वी शॉ ने रिकॉर्ड बना लिया। अब वो डेब्यू टेस्ट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो जब पृथ्वी शॉ से पूछा गया कि ये शतक आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे, तो सुनिए क्या कहा पृथ्वी शॉ ने।
ऑब्वियसली ये 100 में डैड को यू नो देना चाहूँगा, बिकॉज काफ़ी सैक्रीफाइसेस किया उन्होंने मेरे लिए यू नो लाइफ में, अभी भी करते हैं काफ़ी, और यू नो हमेशा मेरा हेल्प किया है। जब भी मैं नर्वस रहता हूँ, जब भी मैं यू नो जल्दी आउट होके आता हूँ, या फिर यू नो काफ़ी चीज़ें लाइक अभी सब बता नहीं सकता, बट काफ़ी चीज़ों में उन्होंने हेल्प किया आई थिंक, सो ये 100 उनको डेडिकेट।
पृथ्वी शॉ को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है, लेकिन इस क्रिकेटर का सफर आसान नहीं रहा। पृथ्वी शॉ जब 4 साल के थे तो उनके सिर से माँ का साया उठ गया। पृथ्वी के पिता को उनकी कोचिंग के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और जाते जाते बात फुटबॉल की, आज प्रीमियर लीग में मुकाबला होगा ब्राइटन एंड होव एल्बियन और वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच। खेल समाचारों में आज इतना ही।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित जज के खिलाफ यौन हमले के आरोप पर आई एफबीआई की रिपोर्ट को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सीनेटर आमने सामने हैं। उनमें से एक डेमोक्रेट ने आरोप लगाया कि व्हाइट हाउस ने एफबीआई के हाथ बांध दिए हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। पश्चिमी देशों ने रूस के सैन्य खुफिया विभाग पर दुनिया भर में कई साइबर हमले करने के आरोप लगाए हैं। अमरीका, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स ने कहा कि रूस ने कई अहम संस्थानों पर साइबर हमले किए, हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है। यूक्रेन और हंगरी ने एक दूसरे के मानद राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है। दरअसल हंगरी यूक्रेन के नागरिकों को अपना पासपोर्ट जारी कर रहा था, जिस पर यूक्रेन ने आपत्ति जताई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने चीन पर अमेरिका की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। पेंस ने कहा कि चीन डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनते नहीं देखना चाहता। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।